ओम शांति।
अभी हम एक दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे, तप की मशाल। 1950s में न्यूज़पेपर में एक खबर छपी थी। एक योगी था, एक युवा, बचपन से ही हिमालय में चला गया, एक बालक, और सालों तक हिमालय में तपस्या करता रहा। जब 20-25 वर्ष का हो गया, तब किसी ने कहा थोड़ा संसार में भी जाओ। तब तक उसे संसार से कटाव, जैसे कि कुछ लेना देना नहीं था उसको, वहीं रहा, वहीं पला, वहीं बड़ा, तपस्या करता रहा, करता रहा, करता रहा, और फिर नीचे आया हरिद्वार, बनारस रेलवे स्टेशन, तो काशी या वाराणसी में आकर वो ट्रेन में जाकर बैठ गया। और ट्रेन में जाके बैठ गया तो वहां से टीसी आया। टीसी ने कहा तुम्हारी टिकट कहाँ है? उसको तो पता ही नहीं टिकट विकेट क्या होती है। उसने कहा नहीं है। टीसी ने कहा टिकट नहीं है तो उतरो नीचे, ऐसे कैसे बैठ गए तुम? तो उसने कहा नहीं, टिकट तो नहीं है मेरे पास। तो वो बेचारा उतर गया और थोड़ी देर के बाद ट्रेन चालू हुई, और चालू होने के बाद ट्रेन चली नहीं रही है कि वो 10 मिनट का स्टॉप था, तो ट्रेन इंजन स्टार्ट हुआ पर ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही है। तो फिर मैकेनिक को बुलाया गया, सारे डब्बे चेकिंग हुई 1 से लेकर 12 तक, कहां क्या फॉल्ट है, इंजन में क्या फॉल्ट है। बहुत देर तक चेकिंग चलती रही परंतु कुछ फॉल्ट पता नहीं चल रहा है। लोग चिल्ला रहे हैं क्यों ट्रेन रोक के रखी है इतना टाइम, क्या हुआ क्या हुआ। तो जो स्टेशन मास्टर था, तो टीसी को लगा, एकदम से उसे ख्याल आया कि वो जो सन्यासी था, जो योगी, उसने अपने साथियों को कहा उसको ढूंढो कहां है वो। तो वो सारे वहां के स्टाफ ढूंढने लगे तो देखा कि वो योगी तो ध्यान लगाकर बैठा हुआ है चाय की टपरी के पास। तो वो टीसी वहां पहुंचे और कहे कि प्लीज गलती हो गई, चलो बैठो आप। तो योगी तो अपनी मस्ती में मगन, और वो जाके बैठ गया, और बैठते ही ट्रेन स्टार्ट हो गई। ये न्यूज़पेपर में छपी हुई घटना है। संकल्प से, तप की शक्ति से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। तप में इतना बल है, पावरफुल थॉट, केवल थॉट, इतना पावरफुल थॉट यदि कोई अपने मन में रेज करे तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो थॉट मटेरियलाइज ना हो। कितना हमें फेथ है, कितनी शक्ति के साथ वो थॉट लिया जा रहा है। हमें याद है जिस हम मेडिकल कॉलेज में थे, वहां पर हमने हमारे प्रोफेसर का लेक्चर सुना था। डॉक्टर आई चीत आई सर्जन थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे और डीन थे। तो उन्होंने एक बात कही थी कि जब 1960s में मैं इस मेडिकल कॉलेज में आया, फर्स्ट डे था मेडिकल कॉलेज का, रैगिंग का डर और वो सारी चीजें, और जैसे ही इस मेडिकल कॉलेज में प्रवेश किया, एक संकल्प लिया कि एक दिन इसी मेडिकल कॉलेज का मैं डीन बनूंगा। और वो विचार, वो थॉट, वो संकल्प, उसकी उन्होंने पालना की, उसको देखा, रोज विजुलाइज किया, सोचते रहे उसके विषय में कि मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है। और एक समय आया कि वो उसी मेडिकल कॉलेज में डीन बन गए आफ्टर लॉन्ग टाइम। संकल्प और तपस्या। हमको ये भी याद है, हम जब मेडिकल स्टूडेंट थे तो हॉस्टल में रहते थे, कोई पढ़ाई नहीं करता था, पढ़ाई का तो कोई नाम ही नहीं था, किसी के पास टाइम कहाँ है। इतने बाकी के काम इतने होते थे सबको, किसी के साथ घूमना है, किसी को मार्केट जाना है, किसी को कुछ करना है, किसी को घुमाना है, हजारों काम होते थे। पढ़ाई का तो किसी के पास केवल एग्जाम के पहले पढ़ते बस, बाकी कोई टाइम नहीं है। हाँ, वो लड़कियां पढ़ती रहती थी, बॉयज तो बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। जिस हॉस्टल में हम रहते थे, हॉस्टल में जो कमरा था हरेक का, हरेक ने अपना नाम लिख के रखा था उसमें, डॉक्टर अनिल, अभी फर्स्ट एमबीबीएस या सेकंड एमबीबीएस में है, और नीचे एमबीबीएस, एमडी, एमएस, यूएस, फिर और बहुत सारी डिग्रियां, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑप्थेल्मोलॉजी, ऐसे ऐसे सब अपने अपने अलग अलग लिख के रखे थे। कोई लिख के रखा था न्यूरोसर्जन, अभी एमबीबीएस ही पूरा नहीं हुआ है पर हर एक ने अपनी अपनी डिग्रियां लगा के रख दी थी। तब पढ़ाई जीरो। पर अब हम जब पीछे मुड़कर देखते हैं, इतने 15-20 साल, जिसने जो लिखा था आज हम देखते वो वही बन चुका है। जिसने लिखा था हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, आप आज वो कहीं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी। जिसने लिखा था कंसल्टेंट ऑर्थोपीडिशियन नी रिप्लेसमेंट एक्सपर्ट, वो आज बन चुका है। जिसने जो जो लिखा था वो बना है थॉट, और उस थॉट को देखना, विजुअलाइज करना, कलराइजेशन, पिक्चराइजेशन, रोज देखना जो बनना है, जो बनना हम चाहते हैं, और वो संकल्प एक दिन साकार होगा। इतना बल है विजुअलाइजेशन में, एफर्मेशन में, रिपीट करते रहना उसको मन ही मन, मन ही मन, मन ही मन, धीरे धीरे वो साकार होगा। तो इस ब्राह्मण जीवन में भी तप का बहुत महत्व है, संकल्प का बहुत महत्व है, तपस्या के संकल्प का महत्व है। जो हमें बनना है वो संकल्प ले लेना, उसी के बारे में सोचते रहना, कैसे उसको साकार करें, उसी के इर्द गिर्द बुद्धि को घूमने देना। जीवन संसार की ओर जा रहा है या तपस्या की ओर जा रहा है, सोचना। जॉर्ज वॉशिंगटन छोटा सा जब बच्चा था, उसके पास पैसे नहीं थे पढ़ाई करने के लिए, काम करता था, नौकरी करता था, स्कूल में काम था घंटी बजाना, बीच में एक पीरियड हो गया, बीच में जो घंटी बजती है ना टन टन टन, वो बजाना उसका काम था। छोटा सा बच्चा, पर वो घंटी बजाते बजाते अपने आप को कहता था, टन टन टन, आई जॉर्ज वॉशिंगटन विल बिकम प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका वन डे, आई जॉर्ज वॉशिंगटन विल बिकम प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका वन डे। संकल्प लिया और एक दिन बन गया। वैसे ही अब्राहम लिंकन, उसका जीवन देखो, कहां तो जन्म लिया किसी गांव में, अश्वेत, ब्लैक, और कहां से कहां पहुंच गया, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, चाहे लौकिक सक्सेस या अलौकिक सक्सेस, दोनों में संकल्प चाहिए और तपस्या चाहिए। तो इस ब्राह्मण जीवन में भी हमें तपस्वी बनना है, और उस तपस्वी बनने के लिए ऐसी हम कुछ 10 बातें आपको बताएंगे। सबसे पहली बात, जो आवश्यक है वो है मौन, साइलेंस। महात्मा गांधी ने अपनी जीवन कहानी में लिखा है एक जगह, प्रोननेस टू एग्जैगरेट द ट्रुथ, proneness to modify or suppress the truth is a natural propensity of man and silence is necessary to surmount it. सत्य के साथ या तो हम उसको दबाते हैं, या तो उसको मॉडिफाई करते हैं, या अतिशयोक्ति करके बताते हैं, एग्जेजरेट द ट्रूथ. सत्य को हम वैसा ही नहीं छोड़ते. एडॉल्फ हिटलर ने अपनी कहानी में लिखा है कि व्यक्ति बिना असत्य के जी नहीं सकता, झूठ बोलना अत्यंत आवश्यक है. मैन कैनॉट लिव विदाउट अनट्रुथ. झूठ ही बोलते रहता है, ऐसा उसने लिखा है. तो मौन बहुत आवश्यक है. ये जो चल रहा है नॉन स्टॉप वर्बल डायरिया, ओरल डायरिया, स्टॉप चाहिए. 6 अगस्त 1910 यंग इंडिया के एडिशन में महात्मा गांधी ने और एक चीज लिखी है. उन्होंने लिखा है, मैं जब अफ्रीका में था तब एक आश्रम में गया, ट्रैपिस्ट मोनेस्ट्री, और वहां पर देखा यहां के लोगों का एकदम स्ट्रेंज नियम है, सभी मौन में है. वहां के जितने सन्यासी हैं, जितने भी इनमेट्स, सभी मौन व्रत का पालन कर रहे. तो मैंने वहां के हेड को पूछा कि ये मौन किस लिए है. तो हेड ने कहा कि हम मनुष्य इतने कमजोर लोग हैं कि हमें क्या पता सत्य क्या है, और जो भी हम बोलते हैं झूठी बोलते हैं, और जब बोलना हमें पता ही नहीं क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, तो अच्छा ना हो कि हम बोले ही ना और चुप रहे. इसलिए हमने हमारे आश्रम में ये जो लोग यहां अध्यात्म में उन्नति करने आए हैं, कम से कम जब तक यहां है तब तक इनके लिए मौन व्रत है. उन्होंने लिखा, इस बात का मेरे मन पर बहुत गहरा असर हुआ. साइलेंस इज अ शील्ड. कैसे रहे साइलेंस? एक विधि है संकल्प करना, एक सुंदर और एक विधि है साइलेंस रहने की. यह संकल्प करना कि मुझे सुनना है आज सारे दिन भर लोग क्या कह रहे हैं या जो भी कह रहे हैं, मुझे फोकस इज ऑन लिसनिंग नॉट ऑन स्पीकिंग. ये विधि है मौन रहने की. नहीं तो एक विधि है कि खाली मौन का संकल्प करो, पर जितना मौन का संकल्प करते उतना ही उसको तोड़ने की इच्छा होती है. इसके लिए अदर वे राउंड, क्या संकल्प करना है, मुझे ज्यादा से ज्यादा सुनना है आज सुबह से लेकर, देखता हूं मैं क्या होता है. ट्रैवल कर रहे हैं, सुनना है. ऑफिस में है, सुनना है. घर में है, पहल मैं ना करूं, लेट मी हियर. एक दिन, और एक दिन भी यदि कोई मौन करे तो शाम को पाएगा कि स्थिति शक्तिशाली हो गई है. You will realize the amount of waste that is coming out of our mouth. Gibberish, jargon, बकवास जो निकलती रहती है, व्यर्थ की बातें, परचिंतन परदर्शन की बातें निकलते ही रहता है, अनवरत, incessant. यदि इस जीवन में तपस्वी बनना है तो सबसे पहली बात चाहिए मौन, दूसरा है एकांत. हम वो बाबा जो परिभाषा देते हैं एकांत की, उसकी बात नहीं कर रहे. एक के अंत में खो जाना वो नहीं, वो तो बहुत सूक्ष्म और ऊंची अवस्था है. हम बात कर रहे हैं ग्रॉस सॉलिट्यूड की, स्थूल एकांत. जर्मन के महान संत इकार्ट कभी किसी जंगल में बैठे थे, जंगल जैसा ही था, और एकांत में सोच रहे थे. वहां से दो मित्र जा रहे थे, उन्होंने देखा अरे इकार्ट अकेला बैठा है, चलो इसको जब कंपनी देते हैं, और वो गए और उससे बात करने लगे और कहे कि हम तुम्हारे पास इसलिए आए कि हमको लगा तुम अकेले हो इसलिए कंपनी देने आ गए. वो कहता है मैं तुम जब नहीं आए तब कंपनी में था, अब तुम्हारी आने की वजह से मैं एकांत में मैं अकेला महसूस कर रहा हूं। एकांत अर्थात जहां मनुष्य ना हो, मनुष्य की कोई आवाज नहीं, दिनचर्या में कुछ समय ऐसा हो कि जहां पे मैं और केवल मैं हूं और कोई नहीं, किसी से कोई, एकांत सॉलिट्यूड। आई शैल स्पीक टू थी इन साइलेंस एंड सॉलिट्यूड। उस सॉलिट्यूड में उस परमात्मा की आवाज आएगी। सॉलिट्यूड। तीसरा है अंतर्मुखता। ये जो मुख है बाहर है, इसको अंदर कर देना, अर्थात स्वयं की चेकिंग, अर्थात स्वयं को देखना, अर्थात आत्मविश्लेषण, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ अकाउंटिंग, सोल सर्चिंग। दूसरों को बहुत एग्जामिन कर लिया, बहुत जज कर लिया, ये अच्छा नहीं है, ये ज्यादा बोलता है, ये कम बोलता है, इसको ये ठीक नहीं, उसका वो ठीक नहीं, मेरा क्या। ये तीनों ही जुड़ी हुई बातें हैं, मौन, एकांत और अंतर्मुखता। एकांत में बैठकर सोचना क्यों ये गलती मेरे से बार बार हो रही है, क्यों ये एक ही बीमारी, एक ही संस्कार, एक ही रोग 10 साल से चल रहा है। Why the same self same addiction? एडिक्शन बन गया, एडिक्शन कहूं, हैबिट कहूं, संस्कार कहूं, क्या कहूं, क्या है ये जो चल रहा है? डरने का, झूठ बोलने का, विकार का, वेस्ट का, इट कुड बी एनीथिंग बट इट इज गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। कैसे मैं इसको रोकूं? ये सोचने के लिए एकांत चाहिए, मौन चाहिए और अंतर्मुखता चाहिए। क्यों ये जीसस क्राइस्ट, क्यों ये मोहम्मद पैगंबर, क्यों ये महात्मा बुद्ध, क्यों गुरु नानक, ये सब लोग बीच बीच में जीवन में दिखाया, एकांत में चले जाते थे, बिल्कुल कट ऑफ। क्या करते थे बैठकर? खुद को देखना। ब्रह्मा बाबा के जीवन में दिखाया है, ज्ञान बाबा की प्रवेशता से भी पहले वो सागर के तट पर जाकर एकांत में खुद से बातें करते थे, चुपचाप, कोई आवाज नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंस। साइलेंस अर्थात स्वचिंतन, केवल चुप रहना नहीं है। साइलेंस अर्थात खुद से बातें, केवल चुप रहना नहीं है। ये तीन चीजें महत्वपूर्ण है। तपस्या अर्थात चौथा, आत्माभिमानी स्थिति, केवल आत्मा का अभ्यास। ब्रह्मा बाबा काम देते थे बच्चों को, तुम इधर जाके बैठो, तुम उधर जाके बैठो, और एक ही संकल्प ले लो, मैं आत्मा हूं, बस तुम, मैं अविनाशी आत्मा हूं, इस पर एक घंटा योग करो, एक ही संकल्प, मैं अविनाशी आत्मा हूं, बस शरीर विनाश हो जाएगा परंतु मैं अविनाशी हूं। बैठ कर केवल इतना ही चिंतन करना, बस ज्यादा से ज्यादा आत्म अभिमानी स्थिति। अगला है तपस्या अर्थात बेहद का बैराग। ये जो दिख रहा है सारा, कुछ भी नहीं रहेगा। ईश्वरे अनुराग विषये विराग। बाबा के महावाक्य, इन आंखों से जो कुछ देख रहे हो आंखों सहित समाप्त हो जाएगा। जिस जिस से लगाव है उसको भस्म होते देखना है, कुछ नहीं रहेगा। ये जो घर इतना बना के रखा है नहीं रहेगा, ये जो संबंधी इतने सारे पकड़ के रखे हैं नहीं रहेंगे, ये जिनको मैं अपना कह रहा हूं आज अपने हैं कल पता नहीं, आज मैं इनके लिए दिन रात काम कर रहा हूं पर वो मेरे नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है मैं इनके लिए कर रहा हूं, ऐसा मुझे लगता है कि इनका मेरे से बहुत प्यार है पर जब मैं मर जाऊंगा तो सबसे ज्यादा खुशी भी उनको ही होगी शायद, प्यार मुझसे नहीं मेरी किसी बात से है, पैसों से या किसी और बात से। एक व्यक्ति होता है वो गुरु के पास जाता, कहता है मुझे संन्यास लेना है, मुझे आपके साथ चलना है, पर क्या करूं, मेरी पत्नी मुझसे इतना प्यार करती है, मैं उसको कैसे छोड़ दूं, उसका क्या होगा मेरे बिना, वो तो बहुत प्यार है और उसका प्यार बहुत सच्चा प्यार है। गुरु कहते हैं अच्छा चलो देखते हैं कितना सच्चा है। वो उसको कुछ ऐसी दवाइयां दे देते हैं और उसको वो दवाइयां कहता है घर पे जाके खा लेना, खाने के बाद ऐसा हो जाएगा जैसे तुम मर गए, शरीर में कुछ भानी नहीं रहेगा, पर हाँ तुमको याद रहेगा, तुम सारी बातें सुन सकोगे, ऐसी दवाई देते हैं। और उसको एक ऐसा एक पोस्चर मुद्रा बता देते हैं कि ऐसा विचित्र मुद्रा में तुम बैठ जाना और लेट जाना। तो घर पे वो ऐसा ही करता है और चारों तरफ फैल जाता है, मर गया है। तो पत्नी बहुत चिल्लाती है, बहुत रोती है, उसको खुशी होती है, देखो बहुत प्यार है इसका मुझसे। और फिर थोड़े देर के बाद उसको रोने के वो सब चालू रहता है, तो वो डेड बॉडी जो होती है उसको बाहर निकालना होता है, पर वो जो दरवाजा बहुत ही छोटा होता है घर का, और वो एक विचित्र पोस्चर में अपने आप को जैसे उसके गुरु ने बताया था उस मुद्रा में होता है। तो लोग कहते हैं ये दरवाजा काटना पड़ेगा क्योंकि ये तो इसमें से निकलेगा नहीं। तो पत्नी कहती है अरे दरवाजा को मत काटो, वो कौन बिठाएगा वापस, इसको काटो नहीं, ये तो वैसे तो मर गया है इसके पैर काट दो ये निकल जाएगा बाहर। दरवाजा काट गया, चंदन का दरवाजा कहां से आएगा नेक्स्ट, तो इसको ही काटो। तो वो व्यक्ति उठ के खड़ा होता है और निकल जाता है। सुरनर मुनि सबकी यह प्रीति, स्वार्थ हित सब कर ही प्रीति। संसार में जितने भी प्यार है तथाकथित कैसे हैं, स्वार्थ झूठ है, पर व्यक्ति भ्रम में जीता है और भ्रम में पलता है और आगे बढ़ता है और कहता है ये मेरा ये मेरी, वो मेरा वो मेरी, यहां कोई किसी का सगा नहीं है। वाक्य लिख के रख देना है यहां पर कोई भी किसी का सगा नहीं है, सारे नाते जो है वो ऊपर ऊपर के हैं, एक उसके अतिरिक्त कोई भी नहीं है। हर एक से कभी ना कभी धोखा होगा 100%। फिर भी व्यक्ति बुद्धि लगाते रहता है, आ फिर बा फिर सा फिर हैरी, टॉम डिक हैरी, टॉम छूटता है तो हैरी को पकड़ता है, हैरी छूटता है तो डिक को पकड़ता है, इसको पकड़ो उसको पकड़ो, किसी ना किसी को पकड़ते जाता है। वैराग अर्थात सभी से वैराग, ये जान लेना वैराग की सुंदर परिभाषा है इन टू वर्ड्स। वैराग अर्थात संसार असार शरीर मिट्टी, सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ वैराग्य, संसार असार और ये देह मिट्टी, सारा मोह तो इसी में है, इस मिट्टी में सारा पागलपन विक्षिप्तता इंसेनिटी इसी देह के देह में है, इर्द गिर्द घूम रहा है, सारी मूवीज सारे मीडिया सारे न्यूज़पेपर सारे उपन्यास सारी मैगजीन्स सारा वर्ल्ड यही देह के इर्द गिर्द घूमता है, इसी का प्रदर्शन, इसी में मोह, इसी को ही जीवन समझते हैं। चौथा पांचवा छठा, अच्छा वो तीन हो गए इसलिए ठीक है, छठा पांचवा इंद्रिय जीत, तपस्या अर्थात इंद्रिय जीत, रूप रस स्पर्श शब्द गंध पांच रस है। रूप आंखें रूप की तरफ आकर्षित होती है, रस जीभ, गंध नाक, शब्द कान, स्पर्श त्वचा, पांच रस है, पागल करके छोड़ते हैं व्यक्ति को, दिन रात ऐसे पीछे पड़े हैं कि कितना भी कोई कहे मैं योगी हूं मैं योगी हूं, पर पांच रसों के अधीन तो है। तपस्या अर्थात इंद्रियों पर जीत, जिसने इंद्रियों को जीता है वही जितेंद्री और वही तपस्वी है, बाकी सब नाम के है। जो भोग विलासिता में डूबे हुए इंद्रियों के जो गुलाम है, योगी अर्थात जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, एक एक इंद्रिय जहां पर शीतल हो गई है, जो उसमें उत्तेजना थी, एक्साइटमेंट था, वो शांत हो गया है। इंद्रिय शीतल देवताओं के लिए नहीं, ब्राह्मणों के लिए है। तपस्वी अर्थात अपनी इंद्रियों को जीतना। एक बार गुलजार दादी कहीं क्लास करा रही थी और अचानक क्लासरूम में बहुत बदबू कहीं से आ गई, तो सब लोग ऐसे ऐसे कुछ कुछ करने लगे। तो दादी ने कहा, ये भी इंद्रिय जीत नहीं हुआ ना, दुर्गंध आ जाए और मुंह बनाना विचित्र विचित्र, क्या ये इंद्रिय जीत है? स्पर्श, स्पर्श से उत्पन्न जो भी सुख है अंततो गत्वा दुख में ही परिणित होते हैं। टच बॉर्न हैप्पीनेस इज कंडिसिव टू पेन, ऑल टच, टच से उत्पन्न जो भी सुख है, इंद्रिय इंद्रिय से जहां मिल रही है, इंद्रिय विषय से जहां मिल रही है, जो टच से उत्पन्न सुख है वो दुखी बनेगा अंत में। थोड़े पल के लिए बस सुख है, चाहे वो टेस्ट का है, चाहे वह हाथों का है, इंद्रियों का है, कुछ भी हो, इंद्रिय जीत बनने पर कितना ध्यान है। आंखों का रस, आंखें जो देह को देखना चाहती है वो आत्मा को नहीं देख पाएगी। तीन दिन चार दिन पहले एक मुरली में था, तीसरे नेत्र से तीसरे नेत्र को देखो। शरीर 1972 की अव्यक्तवाणी है, यह देह विष है, सांप है, सांप सांप में विष होता है, इसके लिए केवल मस्तक मणि को देखो, सांप काटेगा। इंद्रिय जीत। नेक्स्ट, योगी तपस्वी अर्थात, हाँ जी, होगा कैसे? साधना है, पांच कर्मेंद्रिय है, पांचों को जितना खुली छूट देंगे उतने वो भोग में डूबेंगे। यहां पर थोड़ा सा दमन करना पड़ेगा, फोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है इतने भागे हैं, इतने डूबे हैं कि उनको आप बहुत प्यार से अगर समझाओ तो शायद नहीं समझे। चारों चीजें यहां करना पड़े, साम दाम दंड भेद, थोड़ा सा सप्रेस भी करना पड़ेगा उनको, थोड़ा सा उनको समझाना भी पड़ेगा। जैसे एक योगी है, अकेला वन में तपस्या करता है और तपस्या करते करते अचानक एक दिन उसको इच्छा हुई जिलेबी खाने की। अब वन में जिलेबी कहां से आएगी? तो उसने बहुत समझाया अपने मन को, अरे जिलेबी नहीं खाना है, नहीं खाना है, नहीं खाना है, पर मन थोड़ी मानता है, एक बार जो चाहिए मतलब चाहिए। वहां पे सारा लॉजिक तर्क गया, जो इच्छा एक बार हो गई पकड़ के रखता है व्यक्ति उसको। तो उसने अब क्या करूं, तो वो मार्केट गया, जिलेबी ली उसने और फिर अपने मन को समझाया, ये चाहिए थी ना, ले जिलेबी, और फेंक दिए। जी, बहुत सारे तरीके, क्योंकि वो टॉपिक अभी नहीं है इसलिए, नहीं तो इंद्रिय जीत बनना एक लक्ष्य है और उसकी एक विधि नहीं, बहुत सारी, और उसके साथ जुड़े हुए बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारे संसार में योगी और तपस्वी और महात्माएं हुए हैं, उन्होंने इस पर काम किया है। और जो दूसरे है, योगी की परिभाषा ही है इंद्रिय जीत, और जो इंद्रिय जीत नहीं है वो योगी ही नहीं है। पहली बात, जिसका बुद्धि भोग में लगी हुई है वो इंद्रिय जीत कैसे बनेगा? उसमें बहुत सारी टेक्निक्स है, एवर्शन थेरेपी, जिससे आपको छोड़ना है उसके प्रति घृणा उत्पन्न करना, इंग्लिश में इसको कहते हैं एवर्शन थेरेपी। जैसे किसी को स्मोकिंग छोड़नी है तो कैसे छोड़ेगा वो स्मोकिंग? उसको नफरत क्रिएट करनी पड़ेगी स्मोकिंग से। दिस इज वन ऑफ द थियरी थेरेपीज। जिसको छोड़ना है, किसी को यूट्यूब एडिक्शन हो गया है, इट्स अ ब्लैक होल, खींच लेता है, कुछ भी हो सकता है, इंटरनेट एडिक्शन, सोशल मीडिया एडिक्शन, व्हाट्सएप एडिक्शन, फेसबुक एडिक्शन, एनी ऑफ द डिजिटल एडिक्शन ही है वो। उससे यदि छूटना है तो उसके प्रति घृणा उत्पन्न करनी पड़ेगी। तो ये एक बात। अगला है, कितने हो गए? 6, 7, 8, 7, 8, 7, 8 जो भी। इच्छा ओ से मुक्ति, इच्छाएं कम करना है। बहुत सारी संसारिक इच्छाएं हैं और योगी भी बनना है, नहीं हो सकता। यू कैनॉट सर्व टू मास्टर्स, एक ही बन सकते हो, दो दो नहीं। सीक ही फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइटियसनेस एंड ऑल दीज थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू। जीसस के शिष्य उसके पास आते हैं, कहते हैं आप कहते हो आपका संदेश सबको सुनाओ, पर हम कैसे सुनाएंगे? हमको तो बोलना नहीं आता, हमारे पास कुछ साधन नहीं है, सामग्री नहीं है, कपड़े नहीं है, हमको ये सब नहीं है। वो कहता है सीक ही फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, पहले परमात्मा का राज्य को पाओ एंड ऑल दीज थिंग्स शैल बी एडेड अनटू इट, एड हो जाएगा। डोंट सीक द वर्ल्ड फर्स्ट, सीक गॉड फर्स्ट। पहले संसार मिलाओगे तो संसार भी हाथ में जाएगा और भगवान भी। ना माया मिली ना राम, दुविधा में दो गई, दोनों गया। संसारिक इच्छाएं, अंग्रेजी में कहावत है रिलीजियस माइंड इज अ नॉन एम्बिशियस माइंड। बहुत गहरा अर्थ है, जिस माइंड में सांसारिक एम्बिशन से बहुत कुछ पाना है, आईएएस ऑफिसर भी बनना है और ये भी करना है, तपस्या भी करनी है, संकल्प बहुत अच्छा है अगर वो बन के सेवा करनी है तो, परंतु दिशाएं अलग है। कितने कुमार हमारे पास आते हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, सांसारिक इतनी इच्छाएं हैं, और फिर उनको अमृत वेला भी पावरफुल करना है और मुरली का चिंतन भी करना है और मनन, इसमें टाइम चाहिए। एक तो ये लो या वो लो, दोनों दोनों पकड़ रहे, दो लड्डू हाथ में नहीं आएंगे। इस तपस्वी जीवन में बहुत सारी चीजों का त्याग करना होता है। हमारी सेंटर पर रहने वाली बहनें, चाहती तो वो क्या नहीं कर सकती थी, कितनी उसमें से एजुकेटेड कितनी बहनें हैं, चाहते तो बहुत ऊपर जा सकती, कोई कोई सांसारिक पद प्राप्त कर सकती थी, नहीं किया। सुभाष चंद्र बोस वॉज फोर्थ इन आईसीएस एग्जाम 1921। चाहते तो बहुत बड़े ऑफिसर वहीं बन सकते थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, बट ही लेफ्ट 21 अप्रैल 1921 इन अ लेटर टू हिज ब्रदर शरद चंद्र बोस। उन्होंने लिखा है, ओनली ऑन द सॉइल ऑफ सैक्रिफाइस एंड सफरिंग शैल द नेशनल एडिफिस बी इरेक्टेड। केवल उस तपस्या और यातना और सफरिंग की भूमि पर ही राष्ट्रीय इमारत खड़ी होगी। और छोड़ दिया वो। विवेकानंद इन हिज सेकेंड विजिट टू अमेरिका 1895-96 अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने उनको ऑफर की थी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने, हमारे पास आ जाओ एंड टेक द चेयर ऑफ अथॉरिटी ऑन ईस्टर्न फिलॉसफी। ही डिक्लाइंड बोथ बिकॉज देयर वॉज गोइंग कॉन्ट्ररी टू हिज वर्क एज अ मंक। एक सन्यासी और ये एक साथ नहीं हो सकता। यू कैनॉट सर्व टू मास्टर्स, ये भी और वो भी, ये नहीं होगा। रिलीजियस माइंड इज अ नॉन एम्बिशियस माइंड। संसार की तृष्णाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं और उच्चाकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं आध्यात्मिक जीवन के साथ साथ नहीं चल सकती, उधर का बहुत छोड़ना पड़ता है। तो इच्छाओं से मुक्ति। नेक्स्ट, तपस्वी जीवन अर्थात या तपस्वी अर्थात त्यागी। एक बताया वैरागी, एक बताया त्यागी। यू हैव टू रिनाउंस विदाउट रिनंसिएशन, देयर इज नो ब्यूटी ऑफ द लाइफ ऑफ अ तपस्वी। रादर रिनंसिएशन इटसेल्फ इज अ ब्यूटी। त्याग श्रृंगार है और त्याग में बल है। जिस जिसने त्याग किया है संसार में, सब महान बने हैं। चाहे लौकिक भी हो। लौकिक में भी मां अपने बच्चे के लिए सब कुछ त्याग करती है, महानता उसकी उसी त्याग में है। हमारे जीवन की भी त्याग, संसार के भोग विलास, मान शान मैपन, बाबा तो बहुत सूक्ष्म त्याग की बातें करते हैं। और ये नहीं भूलना है कि हमने बड़े बड़े त्याग कर ब्राह्मण बने हैं, और इतना त्याग कर यहां तक पहुंचने के बाद फिर से विकारों का आकर्षण, फिर से हम अपने आप को गिरा रहे हैं, फिर से वही विकार। द टेस्ट ऑफ सेक्स इज फॉल ऑफ मैन, मनुष्य गिरा है, पतन हुआ है, और फिर से वही नरक, वही गंदगी, वही गटर त्यागी। स्वयं को क्या करना है? त्यागी बनाना है, याद दिलाना है कि ये भोग का जीवन हमारा नहीं है। त्यागी और भोगी अलग अलग है, एक नहीं है। कहां मैं त्यागी हूं और कहां भोगी हूं, याद करना है। नेक्स्ट, परमात्मा प्रेम में मगन, तपस्वी अर्थात परमात्मा प्रेम में मगन। अपने बाबा से जो जितना प्यार मुझे है उसको बढ़ाना है। क्या करना है? बाबा से प्यार को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे? कैसे बढ़ाएंगे? बाबा से प्यार कैसे बढ़ाएंगे? अभी यदि हमारा इतना प्यार है उसको इतना करना है, क्या करेंगे? सर्व संबंध उससे जोड़ेंगे, एक, और उससे बातें करेंगे, और याद से शुक्रिया, धन्यवाद, शुक्राना, बार बार उसे धन्यवाद देना। कंप्लेंट लेकर नहीं पिटारा खोल के बैठ जाना, तुमने ये क्यों किया, तुमने वो क्यों किया, तुम ऐसे क्यों करते, तुम वैसे क्यों करते। आज की साकार मुरली, बाप किसी को दुख नहीं देता, बच्चे अपनी उल्टी चलन से दुखदाई हो जाते हैं। तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, ये क्यों, वो क्यों, ये सारी चीजें। शुक्रिया। और मेथड्स ढूंढनी है, कैसे मैं प्यार बढ़ाऊं, कैसे योग को शक्तिशाली बनाऊं, नई टेक्निक्स इजाद करनी है। तो परमात्मा प्रेम में मगन, तपस्वी अर्थात, लास्ट परमात्मा तपस्वी अर्थात निरंतर मधुबन निवासी। चाहे कहीं पर भी रहो, परंतु यह समझो मैं मधुबन में हूं, स्टेज पर हूं, सारी दुनिया मुझे देख रही है। स्टेशन है ये, टीवी स्टेशन, जैसा मैं कहूंगा मुझे देखकर लोग करेंगे। मैं आदर्श हूं, मधुबन में हूं, मधुबन भगवान की भूमि है। तो ऐसी ये 10 बातें हैं। इसके साथ इस चर्चा से आपने जो भी नई बातें सीखी होगी, जो भी बातें आपको लगा होगा हम नहीं कर रहे हैं और करनी चाहिए उसको करना है, और जो लगा होगा ये हम कर रहे हैं परंतु नहीं करनी चाहिए उनको इमीडिएट स्टॉप करना है। मन को आदेश देना है, स्टॉप। एक विधि ये भी सिखाई जाती है साइकोलॉजी में, माइंड को ऑर्डर दो, स्टॉप। जैसे आप स्टैच्यू करते हो ना, स्टैच्यू, उसी तरह माइंड को ऑर्डर करो, स्टॉप, बाबा ने मना किया है। ये वाक्य लिख के रखना है, बाबा ने मना किया है, इस बात के लिए नहीं करेंगे। बहुत पावर है इस शब्द में। तो इसी तरह स्वयं को तपस्वी योगी बनाना है। अच्छा, ओम शांति।